संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 10 अप्रैल 2020 के इस बुलेटिन में शामिल है, वैश्विक महामारी पर काबू पाने में WHO की है बहुत अहम भूमिका, ना हो राजनीतिकरण। COVID-19 का महिलाओं व लड़कियों पर हो रहा है ज्यादा असर, घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी। COVID-19 महामारी के मद्देनजर यमन में युद्धविराम शांति पहल का स्वागत। स्वास्थ्य महामारी के कारण दुनिया भर में कामकाजी घंटों और आमदनी में होगी भारी कमी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नर्सों और दाइयों के योगदान को अभिवादन। और सीरिया में युद्ध के दौरान सभी पक्षों ने किया अंतर्राष्ट्रीय कानून व मानकों का उल्लंघन। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना न भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही आप अपने मोबाइल फोन पर भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। इस ऐप में बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए ताज़ा समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि COVID-19 बेशक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट है, मगर इसके प्रभाव इस दायरे से भी कहीं ज्यादा हैं और इससे वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। महासचिव ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा परिषद की एक बैठक में ये बात कही। इसके अलावा महासचिव ने एक अन्य वक्तव्य में कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन की बहुत अहम भूमिका है। विश्व स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम गेब्रेसस ने भी कहा कि ये समय COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के राजनीतिकरण का नहीं, बल्कि एकजुटता दिखाने का है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
COVID-19 को सामान्य इन्फ्लुएंजा से 10 गुना ज्यादा घातक बताया गया है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एधनोम गेब्रेसस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर इस बीमारी के खिलाफ साझा मोर्चा नहीं बनाया गया तो अनेक और लोग इस बीमारी का शिकार होंगे। उन्होंने नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, धार्मिक और अन्य अवरोधों से परे जाकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
So more than ever before, national unity is important if we care about our people, if we care about our citizens.
राष्ट्रीय एकता की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। अगर हम अपने लोगों की परवाह करते हैं, अगर हम अपने नागरिकों की परवाह करते हैं, तो कृपया पार्टी लाइन, विचारधारा, आस्था और सभी मतभेदों के बावजूद साथ काम करिए। महानिदेशक टेड्रोस ने बताया कि पिछले 3 महीनों में उन्हें कई धमकियां मिल चुकी हैं और उनके खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां भी की गई हैं, लेकिन वो इनसे बेपरवाह अपने काम में जुटे हैं। UN एजेंसी देशों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है और अग्रिम मोर्चे पर जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मेडिकल सामान की आपूर्ति भी की जा रही है। अब तक 20 लाख निजी बचाव सामग्री इकाइयां 133 देशों में भेजी जा चुकी हैं और आने वाले हफ्तों में 20 लाख उपकरण और भेजे जाएंगे। साथ ही पेंडेमिक से जुड़ी गलत सूचनाओं के फैलने यानी इन्फोडेमिक पर लगाम कसने के भी प्रयास हो रहे हैं। अब तक दुनिया भर में COVID-19 से 14 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बीमारी की व्यापकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्याप्त कार्रवाई के अभाव में निर्धन देशों में भारी तबाही होने की आशंका है। अफ्रीका में संक्रमण के मामले अपेक्षाकृत रूप से अभी कम हैं, लेकिन वो तेजी से बढ़ रहे हैं। UN एजेंसी प्रमुख ने संकट की इस घड़ी में वैश्विक एकजुटता की पुकार लगाई है और ध्यान दिलाया है कि चेचक को उखाड़ फेंकने के लिए शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ एक साथ आए थे।
The United States and China should come together and fight this dangerous enemy.
अब अमेरिका और चीन को एक साथ आना चाहिए और इस खतरनाक दुश्मन से लड़ाई लड़नी चाहिए और बाकी दुनिया को भी इस लड़ाई में एक साथ आना चाहिए। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि हजारों की संख्या में कर्मचारी बेहद नाजुक हालात में वायरस के खिलाफ लड़ाई में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन काल में ये वायरस अभूतपूर्व है और इससे निपटने के लिए अभूतपूर्व कार्रवाई की ही जरूरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब दुनिया इस महामारी को काबू में कर लेगी तो वो समय भी आएगा जब ये पता लगाया जाना होगा कि किस तरह ये बीमारी उभरी थी और दुनिया भर में इससे इतनी जल्दी तबाही कैसे हो गई, और जो पक्ष इससे निपटने की कार्रवाई में शामिल थे उन्होंने किस तरह से कदम उठाए। लेकिन फिलहाल ये वो समय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समय एकता के लिए है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकजुट होकर काम करने के लिए है ताकि वायरस और उसके विनाशकारी नतीजों को रोका जा सके।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि लैंगिक समानता व महिला अधिकारों के क्षेत्र में पिछले दशकों के दौरान अथक मेहनत से जो प्रगति हासिल की गई है वो कोविड 19 महामारी के कारण खतरे में पड़ती नजर आ रही है। यूएन प्रमुख की ये स्पष्ट चेतावनी एक ऐसे नीति दस्तावेज में पेश की गई है जिसमें ये विवरण दिया गया है कि मौजूदा महामारी के कारण किस तरह पहले से मौजूद असमानताएं और भी ज्यादा गहरी हो रही हैं। इन असमानताओं के और ज्यादा बढ़ने से महिलाओं और लड़कियों पर महामारी का असर कहीं ज्यादा हो रहा है। महासचिव ने इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के मौके पर एक वीडियो संदेश में कहा कि मैं तमाम देशों की सरकारों का आह्वान करता हूं कि वो कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने के सभी प्रयासों में महिलाओं और लड़कियों को केंद्र में रखें। ये महामारी एक ऐसे वर्ष में सामने आई है जब दुनिया महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ मना रही है। कोविड 19 का संक्रमण पृथ्वी के हर कोने में पाया गया है। यूएन प्रमुख ने कहा कि इस महामारी से वैसे तो हर एक इंसान प्रभावित है लेकिन इसका महिलाओं और लड़कियों पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है जो हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य से लेकर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षा तक। एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि दुनिया भर में लगभग 60% महिलाएं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करती हैं, जिन्हें कम मेहनताना मिलता है, उनके पास धन की बचत कम होती है और उनके गरीबी के गर्त में चले जाने का बहुत ज्यादा जोखिम होता है। जैसे जैसे बाजारों में गिरावट आती है और व्यवसाय बंद होते हैं, लाखों करोड़ों महिलाओं के कामकाज व आजीविकाएं खत्म हो जाते हैं। कोविड 19 महामारी के कारण विश्व भर में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में भी महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा बढ़ी है। दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने यूएन वुमेन संस्था की भारत में कार्यक्रम अधिकारी अंजू पांडे से महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी और उसे खत्म करने के बारे में खास बातचीत की।
विश्वव्यापी महामारी कोविड 19 के कारण तालाबंदी होने से लोग घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामलों में तेजी आई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है, क्या लगता है, क्या स्थिति है?
मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो इस पर चिंता व्यक्त करी है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर मैं उनके शब्दों को रिकॉल करूं अपनी इस बातचीत में तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पूरा फोकस इस बात पे डाला है कि घरों के अंदर कैसे शांति हो और उन्होंने दुनिया भर की सरकारों से आवेदन करा है, उनसे निवेदन करा है कि वो महिला सुरक्षा को अपने पैंडेमिक रिस्पांस के सेंटर में रखें। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि आपदा के समय, ना केवल अगर हम अभी कोविड की बात करें लेकिन आपदा के समय अगर हम पहले की भी कुछ इस तरह की बीमारियों को देखें, इबोला को देखें या हम जीका को देखें, तो उस दौरान इस पर काफी डॉक्यूमेंटेड ग्लोबली अब एविडेंस है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में इस ऐसी आपदाओं के दौरान या चाहे अगर नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके दौरान भी बढ़ोतरी होती है।
भारत में भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने महिलाओं के प्रति हिंसा में बढ़ोतरी की शिकायत की है, क्या कहा गया है इसमें?
मार्च के पहले सप्ताह से अगर हम मार्च के आखिरी सप्ताह तक देखें तो उनमें उनके पास जो कंप्लेंट्स आई हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। मार्च के पहले सप्ताह में हम देख रहे थे कि अगर 116 केसेस थे तो आखिरी सप्ताह तक 257 केसेस हो गए थे। जो रेप है, बलात्कार है या अटेम्प्टेड रेप है उनके केसेस में भी इंक्रीज हुई है 2 से 13 केसेस तक की। और खास करके घरेलू हिंसा के मामलों में ये आंकड़ा जो है वो 30 से 69-70 तक पहुंच गया है इस पीरियड के दौरान। लेकिन एक मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है आंकड़ों को लेकर के वो ये है कि अभी लॉकडाउन के चलते जो सर्विसेज हैं या वो एसेंशियल सर्विसेज या हेल्पलाइंस हैं या वन स्टॉप सेंटर्स हैं या हेल्थ फैसिलिटीज हैं जहां पर कि सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं वो बहुत इंपैक्टेड हैं। तो अगर हम लोग आंकड़ों का मुद्दा लें तो मुझे लगता है कि अभी दिस इज रियली लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमारे पास आंकड़े हैं ही नहीं। एक और चीज देखने को मिली है कि हेल्पलाइन नंबर्स के द्वारा जो कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं उनमें एक्चुअली गिरावट आई है, और ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि जब महिलाएं अपने घरों में बंद हैं तो ये भी पॉसिबल है कि वो उन फोन नंबर्स पे कॉल ही नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ना तो उनके पास घर में वो सुरक्षित जगह है, और ये भी हो सकता है कि बहुत से परिवारों में ओनरशिप जो है फोन की वो पुरुषों या लड़कों के पास है, और महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो उन तक उतनी पहुंच नहीं है।
इसके अलावा इसके कई आयाम और भी हैं, जैसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर महिलाओं को तालाबंदी के दौरान आम रास्ते पर फेंक दिए जाने का खतरा है, वहीं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो फील्ड में काम कर रही हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या लगता है समस्या कितनी जटिल है?
समस्या बहुत जटिल है मैं कहूंगी अंशु, क्योंकि जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो जो सार्वजनिक स्थल हैं वो इंक्रीजिंगली डेजर्टेड है, वहां पर लोगों की कमी है, लेकिन जो घर परिवार हैं वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गए हैं। अगर मैं आपसे एक सेंसस का आंकड़ा शेयर करूं 2011 का, तो भारत में अभी लगभग 70-71% एक या दो कमरों के घर हैं। तो अगर हम एक बड़ी आबादी को देख रहे हैं जो कि एक या दो कमरों में सीमित होकर रह गई है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे विशेषकर महिलाओं और बच्चियों पर, ये हम समझ सकते हैं। कई तरह के स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, एंग्जाइटी है, नौकरी छूटने की एंग्जाइटी है, पैसे की एंग्जाइटी है, बीमारी को लेकर की एंग्जाइटी है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में पितृसत्तात्मकता के चलते ये आम देखने को आया है कि महिलाएं और बच्चे जो हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं।
जाहिर है ये हालात पहली बार हमारे सामने आए हैं, तालाबंदी के समय मामलों को कैसे सामने लाया जाए, उनसे किस तरह निपटा जाए, इन सब मुद्दों पर यूएन वुमेन किस तरह काम कर रही है, क्या कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है?
इस तरह की आपदा को विश्व पहली बार अनुभव कर रहा है, तो जायज है कि जैसे हर दिन गुजर रहा है तो नई सीख आ रही है, क्योंकि अगर आप भारत को भी देखें तो 90-92% तक महिलाएं जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, और उनमें से बहुतों का काम छूट गया है, या जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के मुद्दे पर, या महिलाओं की जो जरूरतें हैं विशेषकर उनकी स्वास्थ्य की जरूरतें हैं, या उनकी जो जैसे सैनिटरी नीड्स हैं, अगर हम देखें तो मानसिक धर्म से जुड़ी हुई जो उनकी जरूरतें हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर यूएन विमेन बाकी और सभी साथी संस्थाओं के साथ, सरकारों के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रही है।
विश्वव्यापी महामारी कोविड 19 की चपेट में आने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में दुनिया भर में कुल कामकाजी घंटों में 6.7% का नुकसान होगा। यह आंकड़ा 19,50,00,000 पूर्णकालिक कर्मचारियों के कामकाज के बराबर है। एक डिस्पैच के साथ सचिन गौड़।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO ने अपने नए अध्ययन में कोविड 19 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा वैश्विक संकट करार दिया है। कामकाजी घंटों में सबसे ज्यादा नुकसान अरब देशों, यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में होने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइडर।
This is a job catastrophe. In these circumstances, it's really important that individual member states.
रोजगार के क्षेत्र में ये भारी तबाही है। इन हालात में ये महत्वपूर्ण है कि ILO के सदस्य देश संगठित होकर उद्यमों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें। ये एक नाटकीय परिस्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइडर। विश्व अर्थव्यवस्था के जिन सेक्टरों पर जोखिम ज्यादा मंडरा रहा है उनमें अतिथि सत्कार, भोजन सेवाएं, विनिर्माण, खुदरा व्यापार, व्यवसाय और अन्य प्रशासनिक गतिविधियां शामिल हैं। वर्ष 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले दिनों में हालात किस तरह करवट बदलते हैं और उनसे निपटने के लिए क्या नीतिगत उपाय अपनाए जाते हैं। UN एजेंसी ने आशंका जताई है कि साल के अंत में बेरोजगारी का आंकड़ा 2.5 करोड़ के मौजूदा अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकता है। तालाबंदी के कारण हर 5 में से 4 व्यक्ति कामकाज के पूर्ण या आंशिक रूप से बंद होने से प्रभावित हुए हैं। नए अध्ययन के अनुसार 1 अरब 25 करोड़ कर्मचारी ऐसे सेक्टरों में कार्यरत हैं जिनमें व्यापक और विनाशकारी ढंग से लोगों के रोजगार छिन जाने, कामकाजी घंटों और वेतन में कमी आने की आशंका है। कुछ क्षेत्रों में, खासकर अफ्रीका में, असंगठित श्रमिकों की संख्या ज्यादा है और सामाजिक संरक्षण का अभाव है। घनी आबादी होने और क्षमता कमजोर होने के कारण सरकारों के समक्ष एक बड़ी स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है। विश्व भर में 2 अरब लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं जिनमें से अधिकांश उभरती या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हैं। उन पर जोखिम ज्यादा है। अध्ययन में कहा गया है कि इस चुनौती से निपटने के लिए नीतिगत कार्रवाई को 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होना होगा। उद्यमों, रोजगारों और आय को सहारा दिया जाए, अर्थव्यवस्था व आजीविका के साधनों को स्फूर्ति मिले, कार्यस्थलों पर कर्मचारियों का संरक्षण सुनिश्चित हो और समाधान के लिए सरकारों, नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित हो।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने युद्ध से त्रस्त यमन में सऊदी अरब की ओर से संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस एकतरफा घोषणा से यमन में शांति स्थापना के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने के साथ साथ कोविड-19 महामारी का फैलाव भी रोका जा सकेगा। बुधवार शाम को जारी एक बयान में यूएन प्रमुख ने सऊदी अरब द्वारा घोषित 2 हफ्ते के एकतरफा युद्धविराम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की। सऊदी अरब ने यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की ओर से की है जो यमन सरकार का समर्थन कर रहा है। महासचिव ने उम्मीद जताई है कि इस कदम से शांति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और देश बेहतर ढंग से महामारी से निपट सकेगा। उन्होंने अन्य युद्धरत पक्षों से भी इसी प्रकार सद्भावना बढ़ाने वाले कदम उठाने का आग्रह किया है। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से लड़ाई में नर्सें अग्रिम मोर्चे पर डटी हैं, लेकिन निजी बचाव सामग्री और परीक्षणों की भारी किल्लत और उन पर काम का अभूतपूर्व भार दर्शाता है कि वे कितने नाजुक हालात में काम कर रही हैं। मंगलवार 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने स्वास्थ्य प्रणालियों में नर्सों के अनूठे योगदान को रेखांकित किया और यूएन महासचिव ने स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत के लिए आभार जताया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने नर्सों, दाइयों, तकनीकी मददगारों, चिकित्सा सहायकों, डॉक्टरों, ड्राइवरों, सफाई कर्मचारियों और प्रशासकों सहित अन्य लोगों को अपने संबोधन में कहा कि वे हमें सुरक्षित रखने के लिए दिन रात अथक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम पहले से कहीं ज्यादा आप सभी के आभारी हैं। आप हर समय अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर काम करते हैं ताकि इस महामारी से होने वाले विध्वंस का मुकाबला किया जा सके। एक डिस्पैच के साथ अंशु शर्मा।
मंगलवार को इस दिवस पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्सेज और नर्सिंग नाउ ने साझा रूप से तैयार किया है। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्वास्थ्य कार्यबल के इस अहम हिस्से को मजबूत बनाने की तत्काल जरूरत को रेखांकित किया गया है। 191 देशों में नर्सों व दाइयों के कामकाज और योगदान पर अपनी तरह की ये पहली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में उनके हिंसा का शिकार होने और डराए धमकाए जाने पर चिंता जताई गई है और संरक्षण के लिए विशेष उपायों की जरूरत को रेखांकित किया गया है। विश्व भर में कुल स्वास्थ्य कर्मियों की आधे से ज्यादा संख्या नर्सों की है और स्वास्थ्य प्रणाली में उनका अहम योगदान है।
सीरिया में 10वें साल में प्रवेश कर चुके बर्बर गृह युद्ध में शामिल पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत तय दायित्वों को पूरा कर पाने में विफल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सोमवार को सीरिया में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के सारांश की जानकारी देते हुए बताया कि लड़ाई के दौरान अस्पतालों और नागरिक प्रतिष्ठानों को भी नहीं बख्शा गया। महासचिव ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी द्वारा तैयार 185 पन्नों की एक रिपोर्ट का सारांश सुरक्षा परिषद को भेजा है। ये बोर्ड 1 अगस्त 2019 को पश्चिमोत्तर सीरिया में संयुक्त राष्ट्र की मदद प्राप्त राहत केंद्रों और अन्य नागरिक प्रतिष्ठानों के हमले में निशाना बनाए जाने के बाद स्थापित किया गया था। ये हमले उन स्थानों पर किए गए जो उस सूची में शामिल हैं, जिनमें उल्लिखित स्थानों को सैन्य ठिकानों के रूप में निशाना नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे या तो स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर पूरी तरह से नागरिक प्रतिष्ठान हैं या संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही दोस्तों। कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखें। अफवाहों व आधारहीन सूचनाओं पर ध्यान ना दें और इंसान होने के नाते एक दूसरे का ख्याल रखें। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।